तो अगर इमाम रहकर न चला जाए कि जहाँ पर इमाम ज़ाहिरी आंखों से ओझल हो नजर न आए, तो वहां पर हमें कितनी तवज्जो करनी चाहिए कि हम वो कदर मंजिलत पा सके। और उसके लिए पहले बैत ने हमें ये मैसेज दिया, ये पैगाम दिया है, अगर इमाम पढ़ते गैबत में भी हो, जब भी उसके फैसला होती हो, फरमावरदार बुजुर्ग जी मोहम्मद कि हम अहले बैत के कुछ लोग हैं जिनको अदा करना तो पर वाजिब है। तवज्जो फरमाइएगा, चार हुकूक ऐसे हैं जो उम्मत पर वाजिब हैं, जो इमाम के हुकूक हैं, जो रहबर और कायद के हुकूक हैं। पहला हक जो उम्मत पर वाजिब अपने इमाम के लिए, वो ये है कि अल वफा बिल बैता, कि उससे जो बैत की है उसका पूरा पूरा हक अदा किया जाए। दूसरा यह है अपने इमाम की मोहब्बत को अपने दिल में जिंदा रखना है। और ये मजालिस आज़ा ये बेहतरीन जरिया है उस मोहब्बत को जिंदा रखने का। तवज्जो फरमाइएगा, ये मजालिस बेहतरीन जरिया है, ये ज़िक्र हुसैन की फर्ज़ आज़ा बेहतरीन वसीला है उस मोहब्बत इलाही को। और हम कह चुके कि मोहब्बत इलाही मोहब्बत रसूल है, और मोहब्बत रसूल मोहब्बत इमाम है, और मोहब्बत इमाम इबादत हुआ करती है। दुरूद ए मोहम्मद वाले हमने कहा था एक कलाम में इसको तूरी सिलसिले के नाम से याद किया जाता है, यानी दरअसल एक ही चेन है, एक ही घड़ी है, एक ही सिलसिला है। ऐसा नहीं है कि इमामत खुदा से हटकर कोई चीज है, ये रिसालत खुदा से हटकर कोई चीज है, बल्कि ये एक थोड़ी सिलसिला है कि तमाम आप इमाम तक पहुंचेंगे तो बहुत आप रसूल तक पहुंचेंगे, रसूल तक पहुंचेंगे तो बहुत आप अल्लाह तक पहुंच जाएंगे। यही वजह है कि हम हमारे लिए आइमा ने कुछ दुआएं तालीम की हैं कि तो हर नमाज के बाद पढ़ो। उनमें से एक दुआ ये है, अल्लाहुम्मा आरिफनी नफ्सका फइलम तुआरिफनी नफ्सका लम आरिफ रसूलक। ऐ खुदा अपने नफ्स की मार्फत करा, अगर तू अपने नफ्स की मार्फत नहीं करे तो मैं रसूल को नहीं पहचान सकता। अल्लाहुम्मा आरिफनी रसूलका फइलम तुआरिफनी रसूलका लम आरिफ हुज्जतक। ऐ खुदा अपने रसूल की मार्फत करा। तवज्जो फरमाइए, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, तौफीक तलब कर रहे हैं, खुदा अपनी मार्फत करा ताकि रसूल को पहचानो, अपने रसूल की मार्फत करा ताकि इमाम वक्त को पहचानो, हुज्जत वक्त को पहचानो, बस बरकत हो। ऐ खुदा आरिफनी हुज्जत, अपने हुज्जत की मार्फत करा। फइन लम तुआरिफनी हुज्जत लम्मा ज़लमत अन दीनी। ऐ खुदा मैं गुमराह हो जाऊंगा, मैं नाबूद बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा सरमाया ईमान तबाह खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या मुराद है कि जो हम कह रहे हैं, इसलिए आप देखिए कि अल्लाह से शुरू करेंगे अल्लाह की मार्फत, रसूल की मार्फत, अहलेबैत की मार्फत, और ज़ियारत जाना कबीर ने फरमाया मन आरा अल्लाह बदा बेकुम, जो अल्लाह तक पहुंचने का इरादा करे, पहली मंजिल पहली सीढ़ी यह है कि अपने इमाम को पहचानो, उसके फराइज को पहचानो, इमाम और इमामत को पहचान लो, तो बहुत खुदा की मार्फत हासिल हो जाएगी। मोहम्मद तो ऐसी ऐसी चीज आती है कि सर पकड़ के दीवार पे मारने को दिल चाहता है, तो जिनका तो सर ना पैर है, ना कोई दलील है, ना कोई इस्तदलाल है, ना अक्ल से कोई ताल्लुक है, ना शरीयत से उसकी कोई मुताबिकत मौजूद है। तो ऐसे नहीं कहना मोहब्बत के तकाजे हैं, और मोहब्बत के तकाजों का अदा नहीं किया जाए तो मोहब्बत के मंतकी नतीजे भी नहीं निकलेगा। हुक्मुल्लाह हुक्मुन्नास, अल्लाह कहता है कि अगर मेरी बारगाह में आना चाहते हो तो पहले हुक्मुन्नास अदा करो, बाद में हुक्मुल्लाह तुम अदा कर सकोगे। अगर कफन पहना है, खुश नहीं दिया, हक नहीं दिया किसी का, तहजीब पैसे नहीं दिए, दुकानदार से कपड़ा खरीद लिया पूरा पैसे नहीं, जिस कपड़े बनाए नमाज पढ़ेंगे नमाज बातें है, जिस जगह नमाज पढ़े जहाँ नमाज खरीद लाए मकान बनाए पैसा नहीं दिया, मजदूर कहा नहीं दिया वो जगह नमाज पढ़ना बातिल है, नमाज कबूल नहीं होगी। वो इन रोज नमाज वो इन कोबिल कोबिल नमाज वाला नमाज कबूल तमाम अमान कबूल नमाज रख तमाम अमान रख। अब उधर कहते हैं पहले हुकूम नाम को अदा करो बाद में हुकूम अल्लाह तो अदा कर पाओगे, यानी खुदा भी ये कहना चाह रहा है। इसी तरह मोहब्बत के तकाजे हैं, खुदा ने अपनी मोहब्बत का तकाजा ये करा दिया है कि पहले हुकूम नाम पहले लोगों को रुको, ऐसा ना हो कि हमसाया वालदैन मियाँ बीवी इसलिए कहा गया कि मियाँ बीवी अगर आपस में इख्तलाफ है, अगर नोक झोंक होती है, नोक झोंक होना तो इतना मसला नहीं है, लेकिन अगर इख्तलाफ है तो उन दोनों की नमाज कबूल नहीं है। बदखुल्की बदअखलाकी वो मरज है, वो बीमारी है जो ईमान को खत्म कर देता है, मोहब्बत को जला देता है। अब खुदा कहता है कि मेरी बात ना मानना चाहते हो, लिहाजा मोहब्बत का तकाजा यह भी कि पहले अल्लाह के हुक्म के साथ साथ बंदों को हुक्म का अदा करो, अगर बंदों को हुक्म अदा नहीं हुए तो तुम मेरी मोहब्बत की बूँद तक नहीं सुन पाओगे। इतनी सख्त मंजिल है इस मोहब्बत के, कुछ तकाजे हैं वो तकाजे को अदा करेंगे तो मोहब्बत का मुंतकी नतीजे सामने आएगा। दुरुस्त है मोहब्बत वाला ये मोहब्बत जो इंसान के दिल में आती है, जो हमने कहा था कि इमाम अली ने फरमाया कि मोहब्बत एक आग है, जब जिस दिल में पड़ती है तो मोहब्बत दुनिया की गलाजतों को दुनिया की पतिदगी और आलूदगी को जला के खत्म कर देती है, खुदा के लिए खालिस कर देती है। और ये वो नूर है कि जिस दिल में पड़ता है वो दिल को नूरानी होना पर रोशन कर देता है। अभी जब मोहब्बत दिल में आएगी तो उसकी कुछ सिफात है जो इंसान से जाहिर होंगे, वो सिफात क्या है जिनको कहा ने तकरीबन 9 सिफात की सूरत में हमारे सामने पेश किया है। मोहब्बत करता है अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह पाकीज़ा लोगों से मोहब्बत करता है, अल्लाह साबिर लोगों से मोहब्बत करता है, अल्लाह इन्नल्लाहु यहब्बुल मुक्सितीन अल्लाह अब इंसाफ से काम लेने वालों से मोहब्बत करता है। अब ये मोहब्बत की सिफात बयान की है कि जिस इंसान में आएंगी अब उसके अमल ऐसे होंगे कि वो साबिर नजर आएगा, वो मुत्तकी नजर आएगा, वो मुतवक्किल नजर आएगा, वो अल्लाह पर भरोसा करने वाला होगा, वो अपने इंसाफ से काम लेगा, वो सबर का दामन मुश्किलात के मुकाबले में कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा खुदा को याद रखेगा, वो हमेशा खुदा की इबादत को सामने रखेगा, मकसद को सामने रखेगा। और इसके बस अगर आप कुरान पाक देखें तो उसमें भी इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरिफीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुअ्तदीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल ज़ालिमीन, कि अल्लाह ताला ज़ालिमों से मुअ्तदीन हद से तजावुज़ करने वालों से इसराफ करने वालों से फजूल खर्ची करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। इसका मतलब कुछ सेवा ऐसी जो मोहब्बत को रोक देती हैं, कुछ सेवा वो हैं जो मोहब्बत के दामों को बढ़ाकर इंसान को मजीद तौफीक तौफीकात इलाही के लिए हमवार और आमदा करती हैं। दुरूद ए मोहम्मद वाले जो कहा गया कि अल्लाहुम्मा अर्जमी नफ्सका ऐ अल्लाह अपने नफ्स की माफ़त करा, क्योंकि अल्लाह कैसे माफ़त करा है तवज्जो फरमाइएगा, भाई मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं अल्लाह मैं अपने नफ्स की माफ़त करा, ऐ अल्लाह अपने रसूल की माफ़त करा, ऐ अल्लाह अपने इमाम की माफ़त करा, तो कैसे माफ़त कराएगा? कोई वही है जो हमारे ऊपर नाज़िल हो जाएगी? खुदा कहता है देखो दुआ और दुआ के कुछ उसूल तकाज़े हैं, अगर उन उसूलों को कारबंद रहो उन पर कारबंद रहोगे, उन उसूलों को मद्देनजर रखोगे और उसके तकाजों को पूरा करोगे तो खुद बहुत तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी, मुस्तजाब हो जाएगी। मिसाल के तौर पर दुआ दरअसल खुदा को पुकारना है, अरबी जबान दुआ खुदा को पुकारने को कहा जाता है, खुदा को हम पुकारते हैं ऐ अल्लाह हमारी मदद करना है, अल्लाह मुझे दुआएं करते हैं। ये दरहकीकत क्या है? ये दरहकीकत तलकीन है जो इंसान अपने आप को करता है। उसकी मिसाल ऐसे ही जैसे आप किसी सफर पर जा रहे हो और बस में चढ़ गए। बात यह आता है कि आपका पर्स या आपका ब्रीफकेस जिसमें आपके कागजात है, पैसा है या कोई और कीमती चीज, आपका मोबाइल सेट जो है वो अंदर का रह गया है। आप किसी शहर जा रहे थे, रास्ते में बस रुकी, खाने के लिए होटल में आपने खाना खाया, दोबारा बस में सवार हो गया, क्या लाए, बस आगे हो गया जाता है कि जनाब ब्रीफकेस रह गए, कागजात रह गए, मोबाइल रह गया, तो आप क्या करेंगे? बस वाले से रहेंगे, बस ड्राइवर साहब सलाम वालेकुम, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि बस लोग दीजिए मेरा ब्रीफकेस, मेरा मोबाइल या मेरा पर्स बताया गया, उसमें पैसे हैं, कीमती कागजात हैं, वो मेरा मोबाइल मतलब जितने हज़ार रुपये का है, आपको गुजारिश इस तरह कहते हैं आप और मैंने से जो है वो एक दादू भरिया छोड़ दो, बस रोको बस रोको बस रोको, हाथ मारेंगे बस में बस रोको। अब ये नहीं अपने पूरे वजूद से चाहेंगे कि बस रुके, जल्दी से आराम करें, अपनी कीमती चीज उठा कर जाए, इसी को तलकीन कहा जाता है। दो लगाने का तलकीन है, اللهم اعبد نفسك اے خدا کا کر ترقیم کرنا آمادہ کر رہے ہیں کہ بیج بو رہے ہیں دعا در حقیقت عمل کا بیج بونا ہے در حقیقت عمل کا بیج بونا ہے اللهم اعبد نفسك اے خدا اپنے نفس کی معرفت کرا اپنے رسول کی معرفت کرا اپنے ایمان کی معرفت کرا یہ بیج بو دیا یہ بیج کب تناؤ در حقیقت نہیں لے گا جب میں خود عمل کے لیے قدم اٹھاؤں گا توجہ فرمائیے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نماز پڑھوں اور یہ نماز ہے نماز دور کا وقت آگے پڑھی ہے اللہ مجھے توفیق دے کہ قرآن کی تلاوت کروں جناب کے قرآن ہے جبرائیل کو نازل نہیں ہوں گے قرآن کھول کر ریل پر رکھیں گے وضو بھی کرا دیں گے آپ کو کہ جناب محترم بیٹھ جائیے آپ نے اللہ سے توفیق طلب کی ہے تو آپ جو ہے میں آیا ہوں اللہ کی طرف سے قرآن کھول کے آپ کے سامنے ریل پر رکھتا ہوں آپ کو تلاوت فرمائیے اللہ مجھے پڑھنے کی توفیق دے خوبی کتابیں ہیں یا آپ کے سبجیکٹس ہیں یا آپ کی نوٹس ہیں یا آپ کے ٹیچر کے نوٹس بنائے ہوئے ہیں یا آپ کے کوچنگ سینٹر کے نوٹس ان کو پڑھیے ان کو سمجھیے اپنے دوستوں دوستوں ڈسکشن کیجیے تو جب تک عمل نہیں کریں گے تو وہ نتیجے سامنے نہیں آئے گی دعا کا تلقین ہے کہ ہم اپنے آپ کو تلقین کرا رہے ہیں خدا ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی لیے حضرت امام مجاہد کے ساتھ پڑھائی کرتا ہوں آخری زمان میں میرے آخری زمانے میں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا ایمان سالم رہے محفوظ رہے تو اسے دعا قریب پڑھنی چاہیے سوچ فرمائیے دعا قریب پڑھنی چاہیے وہ دعا قریب کیا ہے ماں سے پوچھا مولا یہ دعا قریب کیا ہے یا اللہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یہ دعا قریب ہے اس لیے مستحب ہے کہ انسان ہر نماز کے بعد اس کو پڑھے امام نے کہا کثرت سے اس دعا کو پڑھتے رہو تاکہ تمہارا ایمان تمہاری محبت محفوظ رہے اور تم ہمارے راستے پہ گامزن اور یہاں تک کہ ہمارے قائم کا ضرور ہو جائے تو میری محبت آگے سے بات میں بھی کیا ہے ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہو یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب یعنی اے دلوں کو پلٹانے والے اے دلوں کو تبدیل کرنے والے سب قلبی علی دینک میرے دل کو مضبوط کر دے اپنے دین پر اب دعا تو پڑھ لی اب کیسے مضبوط کرے گا اللہ تو مضبوط کر دے سکا اللہ نے یہ وسائل دے دی یہ اسباب دے دی اب انہی اسباب سے ہمیں پڑھنا ہے انہی اسباب سے آگے پڑھنا ہے انہی اسباب سے دین کو مضبوط بنانا ہے انہی اسباب سے محبت خدا کو راستوں کو پختہ کرنا ہے دل میں انہی اسباب سے محبت اہل بیت کو دل میں جگہ دینی ہے لیکن اگر صرف زبانی دعویٰ کر کے بیٹھ جائیں اس لیے ہے کہ محبت خدا جب انسان میں آتی ہے تو پھر وہ سراسر اس کا پورا وجود نفع بن جاتا ہے فائدہ بن جاتا ہے اسی لیے حدیث میں ہے اور مومن کی مدد کا اتنا ثواب ہے کہ ہمارے چھٹے امام ثواب کر رہے ہیں صحابی کے ساتھ محبت خدا کے لیے امام تعلیم دے محبت خدا کیا ہوتی ہے ثواب ہو رہا ہے مستحب ثواب اچانک امام کے صحابی کو اس کے کسی دوست نے آواز اب ساری وہ دوسرے چکر میں تھا اس نے آواز سنی دوسرے چکر ختم کیا پھر تیسرا شروع کر دیا پھر اس نے آواز دی تیسرے چکر پہ تیسرے چکر تمام کیا پورا کیا چوتھا چکر سات چکر پورے ہو گئے جب اس کے چکر پورے ہو گئے تو امام اسے بلایا اور کہا کہ تمہارا دریادر مومن تم کا آواز دے رہا تھا مدد کے لیے پکار رہا تھا اس کی مدد کی کیوں نہیں گئے کہا کہ میں تو اپنے الفاظ کو صدیق کو بھیجتا ہوں میں اللہ کی محبت کو جانتا تھا کہ اپنے دل میں مضبوط و راستوں کو پختہ کروں تو میں اللہ کا طواف اللہ کے گھر کا طواف کرنے آیا تھا توجہ فرمائیے گا तो मैं नहीं चाहता था कि अल्लाह की इबादत में कोई मुगल हो जाए। इमाम ने कहा एक मोमिन की हाजत को पूरा करना ऐसे कई जवाबों से
बेहतर
है। मोमिन की छोटी सी हाजत को पूरा करना ऐसे कई जवाबों से बेहतर है। तो मोहब्बत खुदा मोहब्बत आवाम से मोहब्बत नास से हटकर नहीं हो सकती। दूर मेरी मोहम्मद वाला जो शख्स ये जानना चाहता है, जिसको ये खुशी हासिल हो, जो ये जानना चाहता है कि वो अल्लाह का मोहब्बत है या नहीं, तो वो ये जानना चाहता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है या नहीं, फल यत्तबिना तो उसे चाहिए कि वो हमारी पैरवी करे। अलम यस्मा कौल अल्लाह लिनबी यही, क्या उसने कुरान में अल्लाह ताला का कौल जो अपने नबी के लिए इरशाद फरमाया नहीं सुना? वो कौल क्या है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी, तुम अगर अल्लाह की पैरवी, अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो अपने रसूल की पैरवी करो। तो ये रसूल की पैरवी आले रसूल की पैरवी है। इमाम ये कह रहे हैं कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो तो हमें अहले बैत की पैरवी करो। और इसीलिए हजरत इमाम मोहम्मद बाकर क्योंकि इस मोहब्बत को गलत अंदाज से पेश किया जा रहा है, अमल को भी से निकाल दिया गया। आप नारे हजरी लगा दीजिए इसे जन्नत मिल जाएगी, आप सिर्फ मातम कर लीजिए नमाज की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मौलाना के अकायद के बारे में गुफ्तगू की जाती है। इसी मोहल्ले में हमारा लोगों का अपॉइंटमेंट होना था मजलिस के लिए। अपॉइंटमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आने के कुछ अंजुमन वालों ने पूछा तो भाई ये जो मौलवी जा रहे हो या अकीदे वाला है या नहीं, तब तो फरमा लीजिएगा। ये मोमिन के सामने याद कर रहा हूँ। अंजुमन वालों ने पूछा कि भाई ये जो मौलवी आ रहा है ये अकीदे वाला है या नहीं, ये सिर्फ हरियाणी कराएगा या नमाज भी पढ़वा देगा, ये भी करवा देगा, एक दिन का मजलिस पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। एक साहब कहने में मौलाना दसवीं मजलिस पर पढ़िए, कहते हैं दसवीं मजलिस क्या होती है, कहिए कि नमाज पढ़े रोजा रखे हैं सवाब करें। मैंने कहा मजलिस दसवीं तो होती और क्या होगा, वो मजलिस जिसमें दस ना हो मजलिस ही नहीं होती। दुरूद मेरे मोहम्मद वाला
एक
अहमद शागिर्द वल्लाह, यानी हक अदा किया रोना अहमद शागिर्द नहीं का। आज जो हदीस हम तक पहुंची है ये इतनी आसानी से नहीं पहुंची, इन शागिर्दों ने इन तालीम याफ्ता तरबियत याफ्ता शागिर्दों ने बहुत सौगत उठाई है, इन उलमा ने बहुत काम किया है। खुद अल्लामा अमीनी जिन्होंने अल-गदीर लिखी है 11 जिल्द अल-गदीर मारकत वाला किताब है मदरसा शिया की, विलायत अमीर मोमिन को अहले सुन्नत की किताबों से उनके उलमा के कौन से साबित किया है, और अपने काम में इतने पक्के, अपनी लगन के इतने सच्चे कि नजर से लखनऊ पहुंचे, इंडिया पहुंचे। उस जमाने में न कोई हवाई जहाज होता था, न जाने किस तरह पहुंचे। जब वापस आए तो किसी ने कहा भाई हमने सुना है कि हिंदुस्तान का मौसम बड़ा गर्म होता था, कहीं मुझे तो पता ही नहीं था कि मौसम गर्म भी होता है ठंडा होता है। ये अपने काम में इतने मगन थे, ये अहले बैत के शागिर्द अहले बैत कि ये तरबियत याफ्ता तालीम याफ्ता उलमा ने बड़ी कोशिशें की मौजूद ये रवायात अंदर पहुंचे, दीन अंदर पहुंचे, दुरुद के मोहम्मद वाला हमारे अल्लाह के दरमियान कोई रिश्तेदारी नहीं है, साफ कह दिया है इमाम ने, कोई रिश्तेदारी नहीं है। शफात का जो तस्वीर हमारे जहन में डाला गया है वो कुछ और है, जो अहले बैत की तालीमात के नतीजे में शफात है वो कुछ और है। शफात का तस्वीर ये नहीं कि यहाँ जो कुछ किया बस वहां जो है आपने नारे हैदरी लगाने वहां आप जनाब अहले बैत से मिल जाएंगे, नहीं, यहाँ से अगर उसकी बुनियादें मुस्तहकम नहीं होंगी, अगर अमल के जरिए से उस बुनियाद पर पानी नहा दिया होगा तो वहां पर भी कोई रब्ता रिश्ता मुनाफे नहीं हो सकता। ला खराबता बैनना व बैन अल्लाह, हमारे अल्लाह के दरमियान कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो जो जो शख्स चाहता है कि निजात हासिल करे उसे चाहिए कि हमारे इत्तबा करे, दुरूद ए मोहम्मद अल्लाह। बहुत सारी किताबें एक बार मौजूद है, अगर जो साहब देखना चाहे रिवायत एक बार मौजूद है, दीदार नेकमा में ये रिवायत मौजूद है। आयतुल अरबी शहरी ने इनको तारीफ किया है, मोहब्बत है, मोहब्बत खुदा, मोहब्बत खुदा इबादत है। ऐसे जन के रहा खुदा के दो कसम के गिरोह है, एक गिरोह को है कि जो अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की मखलूक को कभी सर पर आ देते। आज हमारे यहाँ देखें हजरत अली अलैहिस्सलाम के बारे में कैसी किस बात की गई है, ये जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को अपडेट करें। अगर हम मोहब्बत के क्या मंतव्य नतीजा दिलाने का होता है, आप किसी से मोहब्बत करते तो क्यों करते हैं, इंसान किसी से मोहब्बत करता तो क्यों करता है। मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई चीज बाजार में अच्छी लगी तो आपको पसंद है, आप घर लाकर उसको दीवार की जीनत बना दिए, इसका क्या आखिरी मंतव्य नतीजे क्या निकलता है, इसका मंतव्य नतीजे निकलता कि मेरे घर की जीनत में इजाफा हो गया, कोई इसके अलावा कोई और भी है, या आपको पैसे खर्च करने का शौक था आपने पैसे खर्च कर दिए और ऐसे उठा के जाए, नहीं हर चीज उठा के नहीं आते बाजार से, जो चीज जब तक आती है अच्छी लगती है पायदार होती है कीमत मुनासिब होती है लाते हैं, बाद अवान ऐसा होता है कि कीमत ज्यादा भी होती है लेकिन जो दिल को भाग गई आंखों को अच्छी लगी ले आते घर की जीनत बना लेते हैं, मकसद क्या घर की जीनत बना पाओ। तो अल्लाह की मोहब्बत अरे पैर की मोहब्बत का क्या मकसद है, ये मोहब्बत का मकसद ये है कि हमारे दिल की हमारे रूह की हमारे आमाल की जीनत हो सके। जीनत कैसे होगी, जीनत उसी वक्त होगी कि जब हम अहले बैत की खुदा की उनके तालीमात की कदर करेंगे, लिहाजा जरूरी है ये बातें मैं जानबूझ कर आमदन ये बातें कर रहा हूँ, इसलिए ये बातें कहीं जा रही है, पेपरों से गलत मैसेज दिया जा रहा है, मौलाए कायनात को खुदों के जरिए खुदा करार दिया जा रहा है, कुछ लोग हैं सब नहीं है, लेकिन यह हमारा फर्ज बनता है ऐसे लोगों मेंबरों तक जाने से रोकें और उनको समझाएं प्यार मोहब्बत से दलील से सदरा से मंतिक से कुरान की रिवायात से आयात कुरान की आयात से रिवायात से अहले बैत की रिवायात मौजूद है, अखबार मौजूद है, अकल तस्लीम करती है, लॉजिक तस्लीम करती है, लिहाजा ये हमारा फर्ज बनता है कि इसको जो हालात हैं उसमें अगर हमने होश हवास के साथ अपनी जिम्मेदारी को तय नहीं किया, उस पर अमल नहीं किया तो फिर आने वाला वक्त इसका भी ज्यादा बुरा है। آج پوری دنیا میں ایک انقلاب ہے, ایک تحریک ہے, اور اسلامی دنیا اٹھا کے دیکھیں, آپ عرب ممالک اٹھا کے دیکھیں, تیونس ہے, یمن ہے, مصر ہے, یہ سارے ممالک جو انقلاب اٹھے کیوں اٹھا ہے؟ اس کے لیے کہا کہ 30 سال کے بعد, 32 سال کے بعد جب ایران میں انقلاب آئے, 32 سال کم, تو اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ جو عرب عوام ہے وہ شعور کے ساتھ کردار ہو رہا ہے, ان میں شعور آ رہا ہے, بیداری آ رہی ہے. تو ہمارا کیا فرق بنتا ہے کہ ہم عالم اٹھانا ہے, قابو اٹھانا ہے, کس لیے ہو؟ ان کی ایک حکمت ہے, ان کا ایک فلسفہ ہے, لیکن ہم ہمیشہ آگے صرف علم اٹھا کے قابو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کو اٹھا جا کے سو جاتے ہیں. در حقیقت ہم نے اس تعبود سے, اس علم سے, اس مجلس اعظم سے, فرشا اعظم سے سبق نہیں لیا, اس لیے کہ ہم نے بیداری پیدا کرے کہ علم اس لیے اٹھا کے کہ عباس آپ کے ہاتھ سے علم چھینا گیا تھا, اب قوم کا بچہ بچہ بھی علم اٹھائے گا. بیداری ہونے سے علم کو اٹھا لیا, لیکن اگر عباس کی صفات نہ ہو, عباس کی روح نہ ہو, عباس کا جذبہ نہ ہو, تو علم اٹھانے سے کیا فائدہ؟ ہم عالم کو دیکھتے ہیں, علم اٹھانے والے کو نہیں دیکھتے. اب اگر یزید شمر بھی علم لے کے آ جائے گا تو ہم یہ کہیں گے نہیں جا, ہم تو عالم کو دیکھیں گے, اب شمر اٹھا کے لائے, یزید اٹھا کے لائے. تو دیکھیں کون یہ باتیں کہہ رہا ہے, کون یہ کر رہا ہے. 8 ممبروں پر ایسے افراد موجود ہیں جو سازش کے اندر یہ باتیں کر رہے ہیں. میں اپنی اس عزتداری کو, محبت اہل بیت کو, محبت خدا کو, محبت رسول کو در حقیقت عمل سے دور کیا جا رہا ہے. اس بات کی ہے کہ ہم اہل بیت کی تعلیمات کا احیاء کریں, انہیں زندہ کریں کہ اہل بیت نے کیا کہا. لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے, فساد لڑائی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ پیار سے, محبت سے, عقل سے, دلیل سے بات کی جائے کہ بھائی آپ ایسی باتیں کیوں کہتے ہیں کہ جس سے غلو کا اثر آتا ہے, جس سے کفریات کی بو آتی ہے, آپ کیسے باتیں نہیں کہنی چاہیے. اہل بیت کی تعلیمات اس کے خلاف اگر آپ روایات بہنجو پڑھیں جو غالی حضرات کے لیے آئمہ نے کہیں ہیں, اشارت فرمائی ہیں کہ ایسے بات نہ کرو, ان سے رشتہ توڑ لو. اگر یہ لوگ جان بوجھ کر عمدن یہ کام کر رہے ہیں تو ان کا انجام بہت برا ہوگا کہ بات جانے, اور اگر صحبان کر رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے بھائی ہیں, یہ مکتب تشیعیوں کا حصہ ہیں, یہ شیعہ قوم کا حصہ ہے, ہمارا چاہیے کہ ہم ان کی ہدایت کریں, ان کی صلاح کریں, ان کا ہاتھ تھامیں. اور یہ علماء کا بھی فرض ہے, اور جب علماء کا فرض ہے وہاں آپ کا بھی فرض ہے. ایسے افراد اگر آپ سمجھا سکتے سمجھیں, نہیں سمجھا سکتے کسی عالم دین کے پاس لے جائیں تاکہ وہ سمجھا سکیں, لیکن پیار سے, محبت سے, بھائی چارگی سے, حقوق سے, برادری سے, ایسا نہ ہو کہ نظر کی کیفیت پیدا ہو, ایسا نہ ہو کہ تفصیل در تفصیل کو اس کا سامنے آ جائے. دور میری محمد اللہ علیہ وسلم. آج پوری دنیا میک ان انقلاب پر پر دیکھیں, 2 سال قبل ایران میں جو حالات پیش آئے تھے اس کی بازدش یہاں پہ سنائی گئی ہے. 2 سال قبل جب میتی کروبی اور میرزا مسمی نے اسلامی انقلاب کے خلاف بغاوت شروع کی اور انقلاب میں انتخابات میں دھاندلی کا الزام لگایا دشمن کی سازش کے تحت, یہ میتی کروبی کون تھا؟ یہ مومنی کی حیات کے زمانے میں بہت بڑا کردار رکھتا تھا. انقلاب کو لانے میں اس کی بہت بڑی قربانی ہے, بہت بڑا حصہ ہے, بہت بڑا نام ہے, بہت خدمات ہیں, لیکن گمراہ ہو گیا. مولوی ہے تو امامہ سے دھوکہ مت کھائیے, آپ اقوام سے دھوکہ مت کھائیے. بہت سارے لوگ تھے جو رسول اللہ کے ساتھ تھے لیکن بعد میں حضرت کے خلاف ہو گئے. طلحہ و زبیر نے جو صحابی رسول تھے انہوں نے حضرت علیہ السلام کی بیعت شکنی کی, تو امام خمینی نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ ممکن ہے ماضی میں کسی کا کردار اچھا ہو لیکن اس کا موجودہ عمل جس زمانے میں وہ رہ رہا ہے وہ موجودہ عمل کا سوچ رہا تھا. اب یہ میری کروبی میر حسین مصری کون ہے؟ میر حسین مصری کون ہے جو اسلامی انقلاب کے شروع میں جنگ کی ابتدائی زمانے میں وزیر اعظم تو ایسے بڑی خدمات پیش کی لیکن آخر میں گمراہ ہو گیا, کھلونا بن گیا استعمار کا دشمن کا. और वहां के दावे करने लगे कि जाना फिदाई ना फलस्तीन ना जुर्दान जाना फिदाई है ईरान, यानी ना मैं फलस्तीन के लिए जान दूंगा ना जुर्दान की हिमायत के दावे लगाऊंगा, मेरी जो जान है सिर्फ ईरान फिदा, यानी ईरान और ईरान ये तो कौमियत को उजागर किया गया, इस्लामियत को हटा दिया गया, यहाँ पर भी हमें मदारिस पे आए नहीं, वहां दुश्मन उनको
अगर मैं इनका रफा करने जफा की बात करते हो तो मैं तुम सदा पढ़ा हूँ
तो कौन दूसरा लोगों को बनाया जा रहा है कि हर तरीके से जहालत को फैलाया जा रहा है, मेंबरों से जहालत। और दूसरी तरफ ये काम किया गया, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसे हैं, कुछ सरसरी जैसे हैं, शोरा जिनका एक मुकाम है, जिनकी अहमियत है, शोरा की बहुत बड़ी खिदमत है, कुछ शायरों को लिया गया, कहा कि जनाब आपने जो है वो सिर्फ अरियरी कराना है, अल्लाह रसूल से कोई वास्ता नहीं है, और उनके जरिए ऐसे ऐसे अशआर कहलवाए कि जिसमें से अमल का, जिहाद का, करबला की तासीर बदली का मुसल खत्म हो जाए। मोहब्बत के तकाजे, मोहब्बत के तकाजे ये हो कि अहले बैत की मोहब्बत को किस तरह अपने दिल में रास्ते में मुख्तर किया जाए कि अमल से जाहिर हो सके। इसलिए हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हमारे लिए जीनत बने, तुम्हारा अमल हमारे लिए जीनत बने, और लोग ये कहें कि जाफर सादिक का मानने वाला है, ये हमारा शिया, ये हमारा नशे का नशा करने वाला है। ऐसा ना हो कि तुम्हारा अमल ऐसा हो कि लोग ये कहेंगे तो ये शिया हो गया अमल। मैं तो दलील से बात कह रहा हूँ कि अगर हम आज किसी को शिया कहना चाहें तो अपनी इन मौजूदा हरकतों से जो हम अदा कर रहे हैं किसी भी सतह पर किसी को शिया नहीं कर सकते। हमारी अदादारी में ऐसी चीजें शामिल हैं जिनका इस्लाम और दीन को ताल्लुक है, मतलब ये भी उसी के समय बार हम हमेशा कहता हूँ। हाँ, एक माँ के अरमान होते हैं, देखिए एहसास के जज्बात को समझिए, एक माँ के अरमान होते हैं बेवा माँ के अपने जवान बच्चे के सिरे के फूल देखे, और ये अरमान मादरे हजरत कासिम को भी, बेवा इमाम हसन को, और शायद ने अपने तफय्यु के तहत क्या किया, उसको अशार खाले में डाल दिया। एक माँ के अरमान ये होते हैं, क्योंकि शायद कोई आलिम तो होता नहीं है कि जनाब वो रिवायत को देखे और रिवायत की रोशनी में, रिवायत की तर्जुमे की रोशनी में अशआर लिखे, क्योंकि बहरहाल शायरी की दुनिया बहुत वसी होती है, तहय्युल की, तहय्युल की दुनिया बहुत वसी होती है, इस्तेआरात हैं, तशबीहात हैं और दूसरी चीजें शामिल है, बहरों का भी ख्याल रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को जो आम नसब में जायज होती है वो नजम में आके हराम हो जाती है, हराम हो जाती है, इनका इस्तेमाल तर्क कर दिया जाता है, बहुत से मतलूक अल्फाज, महजून अल्फाज छोड़ दिए जाते हैं, वो शायरी में उनका इस्तेमाल जायज हो जाता है, बल्कि वाजिब हो जाता है कि इनको लाया जाए, क्योंकि शायरी की अपनी दुनिया, उसके अपने उसूल कवानीन है। अब शायर जब कलाम लिखता है, जब शेर लिखता है, तो फिर वो उन्हीं उसूलों को मद्देनजर रखता है, लिहाजा अब उसने हजरत कासिम को शेरा लिख दिया। अब उनको शादी थोड़ी हुई थी, 13 साल बच्चे की शादी थी। मैं हमेशा देखिए अकल गरीब को लड़ने झगड़ने की बात नहीं, अकल अकल क्या कहती है कि नौसे शादी करने के अंदर पहली बार क्या 13 साल नाबालिग बच्चे की जब शादी सुनी आपने, वो भी इमाम हुसैन जैसी हस्ती से, वो भी फर्जंदे इमाम हसन के लिए, अकल तस्लीम नहीं करती, अकल तस्लीम नहीं करती है एक नाबालिग बच्चे की शादी की। हाँ, अरमान जब आ गया वो शायद अपने तो फैलिट करती है। अब हमारे यहाँ पूरी मेहंदी की रस्म है, हमें तो पता है मद्दा की इसी इलाके में मुद्दा से आगे आलियाबाद से आगे गए पूरी जनाब शादी मुनासिब की जाती है, जिसमें शादी होती है, बारात आती है, मेहंदी आती है, उसमें पूरा सिलसिला किया जाता है। अब आप किस चीज को रोकती है, आपने एक काम शुरू किया तो कौम तो माशाल्लाह से सबके हाथ आगे हैं, सब माशाल्लाह से फ्री हैंड है, सभी माशाल्लाह से मुश्तहिद जानु शराय से सभी आयतुल्लाह सभी फतवे देने वाले हैं सब अपने हिसाब से। तो इन चीजों को अकल से, दलील से, मंदिर से रोकना चाहिए, समझाना चाहिए, फिर लड़ने से पहले गुजरों के लिए अगर रख कर काम है दूर के लिए मोहब्बत। इस मोहब्बत को नापने, जांचने, तोड़ने का आला ही है कि देखो कि गुनाह के वक्त अगर गुनाह की तरफ कदम बढ़ा तो ये खुदा की तरफ कदम बढ़ा, अगर गुनाह की तरफ कदम बढ़ा तो फिर अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी कोई कदम नहीं जाते, और अगर अल्लाह की तरफ कदम बढ़ा तो हदीस के अल्फाज अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, जब तुम्हारे सामने दो अमर दो काम रखे जाए कि एक अल्लाह की तरफ जाता हो, एक तुम्हें शैतान की तरफ भेजाता हो, तो अगर तुम शैतान की तरफ जा रहे हो, शैतान का हुक्म मान रहे हो, तो समझ लो खुदा की बात में तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं, लेकिन अल्लाह की तरफ जाते हो जितनी बेबी तुम अल्लाह को देते हो उतनी ही बेटी अल्लाह को देते हो, जितनी अहमियत तुम अपने इमाम को देते हो उतनी ही अहमियत इमाम तुमको देता है। और मैं पहले कह चुका हूं कि काश अगर ऐसा भी होता तो बहुत था, लेकिन आप देखें कि क्या जितनी हम इमाम से मोहब्बत करते हैं क्या इमाम भी हमसे उतनी मोहब्बत करता है, नहीं।
इमाम हुसैन कभी गुनाह ना करता होता करता
तो हम क्या कहते हैं जब कोई बड़ी शख्सियत आती है टेलीफोन करते हैं आपका तशरीफ लाएंगे आपका दीदार कब होगा कहते नहीं कहते भाई आप लोग तशरीफ ला रहे हैं हमारे घर आपका दीदार कब होगा तो ऐसे लोग आप क्या कहते हैं नमाज वाला के लिए मता तराना व नरा मता तराना यही वो वक्त कब आएगा आपका कि जब आप हमें देखेंगे व नरा और वो वक्त कब आएगा कि जब हम आपको देखेंगे जिसकी इंतजार कर रही हो और मुंतजर वो जो अपने कौम के अपने सेवा के पूरे और कामिल होने का इंतजार कर रहा है मेरा वक्त है कब मेरी फौज कामिल होती है जिसमें खुदा जरूर होता है वो मुंतजर है इसलिए मजा आता है कब आप हमें देखेंगे कब आप हमारी ज़ियारत के लिए आएंगे कब आप हमारे दरमियान आएंगे वो नारा और कब हम आपको देखेंगे इसका मतलब ये कि हम जितनी मोहब्बत करते हैं इमाम हुसैन कई गुना ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है कई गुना ज्यादा और ये जो आप मजलिस में आए हैं इतना खर्च कर जाते हैं माता करते हैं पैसा खर्च करते हैं टाइम देते हैं इमाम की जो तोहफा है जब आप इमाम के तहत एक तोहफा पेश करते हैं तो इमाम भी आपका शुक्रिया अदा करता है लेकिन इमाम के शुक्रिया की नौबत हम इंसानों के शुक्रिया की नौबत से मुख्तलिफ होती है बहुत सी गलाएं दूर हो जाती हैं बीमारियां दूर हो जाती हैं परेशानियां दूर हो जाती हैं इसी से मुक्ति हो जाती है जो कुछ हमारे अपने नाते से था वो आपके सामने पेश करें जरूरत इस बात की है कि इन मौजूदा जो मसीह को फिर होनी चाहिए खुदा की मोहब्बत जो अहले बैत के दिल में है जो दुआओं की सूरत में अहले बैत की तालीमात की सूरत में आदि की सूरत में मौजूद है जरूरत इस बात की है कि इनको खोला जाए बयान किया जाए ये दुआ इनके डिस्कशन होना चाहिए हजरत इमाम रज़ा अलैहि सलाम अगर चाहते हो कि वो हमारी इज्जत करें तो लोगों के सामने हमारे कलाम के खूबसूरत नुमा पेश करो कौन करें इमाम रज़ा फरमाए कि लोगों के सामने हमारी अहादीस पेश करो तालीमात पेश करो जब वो हमारी तालीमात के हुस्न और खूबी और रानाई को समझेंगे लग तबाउना तो हमारी तैयार हो जाएंगे ये मजालिस का काम मौलाना करता है जैसे कि हुसैन की और कोई नियमत है कि हमें चाहिए कि उन मौजूदा को गुफ्तगू करें कि हम अहले बैत की हमें की तालीमा से आशना हो और अहले बैत की तहजीब तैयार हो और ये अहले बैत है कि जिन्होंने कदम कदम पर हमारे रहनुमाई की इस्लाह की हिदायत की हमें नूर पहुंचाया ये मोहब्बत खुदा है कि जिस किताब में जिस तफसीर के लिए हुसैन दरबारा में आते हैं ये मोहब्बत खुदा है अपने कौम को अपनी उम्मत को अपडेट करने के लिए इमाम हुसैन अपने असबाब के साथ अपने बच्चों के साथ अपने अहले खाना के साथ अहले बैत के साथ कर्बला में आते क्यों इसलिए कि कौम की इस्लाम की जरूरत है इमाम हुसैन अलैहि सलाम हमें अपडेट करना चाहिए अदादारी के जरिए से अदादारी एक नेमत है जनाब जैनब की एक अमानत है जनाब जैनब की हजरत कयामत से पूछेंगे जनाब जैनब तुमने क्या किया मुझे शायद बात मोहम्मद अमीर आने का बात आ गई तो उनका अर्ज करता चलूँ आज लेवल आ गया या मैं खत्म होंगे नौ लेवल को इमाम जमाने की इमाम के पहला दिन है जिसका हमारी जबान में हमारी रिवायत जो हमारी सकाफती रिवायत है उनकी जबान में कारपोशी का लफ्ज है हालांकि कारपोशी का लफ्ज इमाम के लिए बहुत छोटा है इमाम बादशाहों में बादशाह है इमाम शहनशाहों में शहनशाह है इमाम की इमाम का पहला दिन है ये बहुत चूंकि हम हिंदू मोहम्मद रखते हैं जहाँ किसी बादशाहों का शहनशाह का नवाबों को मानता है जैसे किसी बड़ी शख्सियत को शायद इन बादशाह शहनशाह कहा जाता था जिले अलाई कहा जाता था आलम खाना कहा जाता था तो वही चीज हमारे रिवायत पहला इमाम शहनशाहों से बढ़कर है इमाम कायनात का मालिक दुरुद है मोहम्मद वाला खत्म होते हैं और हमारे यहाँ खुशी का आनंद क्या होता है खुशी में आपे से बाहर हो जाते हैं हुदूद को तोड़ देते हैं आपे से बाहर हो जाते हैं तालीमात इलाही की तालीमात मोहम्मद अली मोहम्मद को बालाए ताबर देते हैं जनाब कुछ नहीं है है, जिसकी खुशी है आए उसको नाराज करके उसकी खुशी मना रहे हो। अहले बैत की आंखों में आंसू लाकर खुशी मना रहे हो, नहीं जनाब खुशी मनानी है। अभी मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यफ़रहून लिफ़रहना व यहज़नून लिफ़ज़ना, हमारे शिया इन्नल्लाह ताला लना शियतन, अल्लाह ताला ने हमारे लिए शियों को करार दिया है, हम उनसे हैं, वो हम में से हैं। उनकी पहली सूरती बताई यफ़रहून लिफ़रहना, वो हमारी खुशियों में हमारी खुशी के मुताबिक हमारे लोगों के मुताबिक खुशहाल होते हैं। वो ये हज़नून ने उज़नना, और हमारे गम में हमारे किरदार के मुताबिक हमारी तालीमात के मुताबिक गमगीन होते हैं। अगर गम भी है तो ईमान के हुक्म के मुताबिक हम मनाया जाए, खुशी भी है तो ईमान के हुक्म के मुताबिक उसकी खुशियों को नजर रखते हुए हम मनाया जाए। लेकिन हम कहते हैं खुशी है लगा हर चीज जायज हो जाती है, देखिए किसकी खुशी है किसका गम है। इस बात की है कि इन तमाम चीजों को सामने रखें ताकि रोजे कहना जब जनाने जहनब हमसे पूछे कैसे जाते कि क्या किया, ऐसा ना हो कि जो तुम्हारे दिल में आता था ना खुशी है सिर्फ हम ऐसे, पर मेरा अकीदा ये है अकीदे की दुनिया को इतना वसी कर दिए कि आप जो चाहे ख्याल करें, जो चाहे फिक्र लाएं, जो चाहे जहनों का में आपके फिक्र समा जाए वो आपका अकीदा हो जाएगा। हर आदमी का अकीदा अलग अलग हो गया, अकीदा क्या कह दिया गया कैसे अकीदा और अमल या अकीदा ईमान पर बेहतर होना। करते हैं उनके लिए भी मजलिस के लिए भी मजलिस के लिए भी सामईन के लिए भी और मजलिस पढ़ने वालों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इतनी आसानी से निजात मुमकिन नहीं है। किसका सामना होगा सामने जाएगा था कि जिसने अपनी चादर दे दी कौन बिनते अली, कितना सख्त है आप तसव्वुर कीजिए कि 40 हिजरी में अमीर मोमिनीन इस्लाम की शहादत हुई है, 61 हिजरी में करबला बना है, 21 साल में ये कैसा इंकलाब आया कि अली की बेटी जो शहजादियों की तरह जिस शहर में रहती हो 21 साल बाद उसी शहर
सवातीन